पर
ऐसा मुझे नहीं लगता। आपको यहाँ की नदियों के जल से इतना मोह है कि मेरा पानी पिया हुआ भी आपको नहीं सुहाया, ये भी मुझे नहीं लगता। आप कम से कम नीति और अनीति, निग्रह और अनुग्रह, राजधर्म और पशुधर्म, इन सब को आप अलग अलग ढंग से देखना तो चाहिए था। आप क्रोध करने लग गए। आपने क्या समझ के क्रोध किया है, आपके अंदर क्या इच्छा है? मुझे मालूम है आप में कोई ना कोई विशेष इच्छा है, तभी आपने ये मेरे साथ युद्ध मोल लिया है। आप कोई बहुत बड़े स्वार्थ से यहाँ आकर आपने मेरे ये छाती पर बाण लगाया है। हे राम, एक बात का तुमने विचार नहीं किया, मरना तो एक दिन तुमको भी पड़ेगा ना। मरने के बाद लोग तुमसे वहां स्वर्ग में पूछेंगे कि राम तुमने बाली के बाण क्यों लगाया, तुमने वो बाली के बाण लगाकर पाप क्यों किया, तो तुम सत्पुरुषों में बैठकर क्या जवाब दोगे? स्वर्ग की बात जाने दो, तुम कोई हरदम तो जंगल में रहोगे नहीं, तुम बड़े बड़े राजाओं के बीच में बैठोगे। वे राजा लोग तुमसे पूछेंगे कि राम तुमने बाली की क्यों बाण लगाया, क्या किसी राजा के सामने तुम मुंह दिखाने लायक होंगे? नहीं नहीं राम, एक एक सत्पुरुष तुमको उपालंब देगा। हे राम, जो राजा की हत्या करने वाला होता है, ब्रह्म हत्यारा होता है, गाय को मारने वाला होता है, दूसरे प्राणी को मारने वाला होता है, नास्तिक होता है, परिवेत्ता होता है। परिवेत्ता माने बड़े भाई के रहते हुए स्वयं छोटे भाई अपना ब्याह करा ले, वो परिवेत्ता होता है। ये सब नरक में जाने योग्य होते हैं। दूसरे की निंदा करने वाला और विश्वासघात करने वाला और गुरु तलपक, ये सब निंदनीय होते हैं। लेकिन आपने मेरे इतना ये जो निंदनीय काम बताया, एक भी मेरा आप काम बता दीजिए, मैंने क्या आपके साथ किया? ओहो, आप क्षत्रिय हो, आप शिकार खेलते हो, आप मांस के लिए पशुओं को मारते हो, तो हे राम तुमको विचार करना चाहिए कि हम बंदरों का मांस कभी खाने के काम नहीं आता। पांच नाखून जिनके हैं उनमें केवल पांच ही प्राणी मारने योग्य होते हैं, शल्यक है, स्वाविदय, गोधा, शश, कूर्मश्च, पंचमः। ये पांच ही मारे जा सकते, दूसरे नहीं मारने चाहिए। दूसरों की चर्म हड्डी वगैरह कुछ भी काम नहीं आती। अरे राम, ये क्या किया तुमने? मेरी पत्नी तारा ने आज मुझे बहुत मना किया था, ने कहा था कि आप आज युद्ध के लिए मत जाइए। तारा ने मुझे कहा था कि इस पृथ्वी को सनात करने वाले राम यहाँ आए, घबराना नहीं, घबराना नहीं। तारा ने कहा था कि मैं एक सतपत्नी होने के नाते आपसे प्रार्थना करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात को बहुत आदर की दृष्टि से, उसकी बात को आदर की दृष्टि से नहीं देखा। और हे राम, तुम यदि सीता के लिए मुझे मारते हो तो सीता तो भाई तुम मेरे पास आते तो सीता के लिए मैं रावण को अपने आप यहाँ बुला लेता और सीता तुमको मिल जाती, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो बाली के जब बाण लगा और भगवान श्री राम जब बाली के पास आए तो बाली ने पूछा कि आपने क्या समझ के मेरे बाण लगाया? मैंने कोई आपके साथ लड़ाई छेड़ी नहीं, मेरे मारने से आपको कोई स्वार्थ पूरा होता दिखता नहीं। यदि आपने सुग्रीव का पक्ष लिया कि सुग्रीव है ये रावण को बस में करके और सीता मुझे मिल जाएगी, ऐसा यदि आपके मन में भाव था तो आप मेरे घर आते। आप एक राजकुमार हो और आप एक भगोड़े के पीछे कैसे चले गए? सुग्रीव तो भगोड़ा है, यहाँ से भगके गया है। और आप राजकुमार हो और मैं राजा हूं यहाँ का, तो आपको मेरे पास आना चाहिए। यदि आपको पिता ने किसी नगर में जाने के लिए मना किया है, भाई हम नगर में नहीं आते, तो आप बाहर खड़े हो जाते जंगल में, मुझे आप बुला लेते, मैं चला आता। क्योंकि आपके बारे में मुझे मालूम तो था ही, परंतु आपने सुग्रीव के साथ मित्रता की। मैं एक दिन में रावण को यहाँ ले आता सीता के साथ, और कंठे बद्वा प्रदद्याम उसके गले में मैं सांकड़ बांधता हूँ, और जैसे हम बंदरों को नचाते ऐसे मैं रावण को नचाता। सीता आपको मिल जाती, आपकी सब बात पूरी हो जाती। फिर आपके मन में यह रहता कि भाई रावण है, फिर कभी ले जाए तो मेरे साथ में मित्रता करने पर रावण कभी आपकी तरफ बोल नहीं सकता था, क्योंकि रावण का बल कितना है मैं जानता हूँ। कि एक बार मैं संध्या कर रहा था तो रावण ने आकर मेरे पाठ पूजा में संध्या में बाधा डाली। मैंने उसको कहा कि देख रावण, मैं समुद्र के किनारे संध्या कर रहा हूँ, सूर्य को मैं जल दे रहा हूँ, तो मेरी तपस्या में बाधा मत डाल। रावण माना नहीं तो मैंने उसको पूंछ में लपेट करके खाक में लपेट लिया, खाक में बांध लिया और आकाश में उड़ गया। अब रावण डर गया, रावण डर करके मुझसे माफी मांगने लगा, मैंने छोड़ दिया। बताओ सुग्रीव के पास में कभी रावण आया तो आप सीता के लिए भी मेरे से मित्रता करते, और कोई दृष्टि से देखा जाए आपने मेरे साथ अच्छा काम नहीं किया। अब भगवान भी उसका बड़े विस्तार से उत्तर देते हैं। भगवान कहता है कि देखो बाली, धर्म का, अर्थ का, काम का, इनका समय समय के अनुसार उपयोग होता है, और तुमने कभी जीवन में अच्छे पुरुषों का संग किया हो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि तुमने इतना ही विचार कर लिया कि मैं खाता हूँ, पीता हूँ, परिवार में रहता हूँ, राज्य करता हूँ और अपने काम से काम रखता हूँ, तुम्हारे साथ कोई मेरा बैर नहीं, मुझे क्यों मारा, इतनी तो बात बोलते हो, पर ये नहीं देखते कि खाना पीना चलना फिरना उठना ये धर्म को लेकर होता है। आदमी को सोना चाहिए तो धर्म पूर्वक सोना चाहिए, माने रात को सोए तो उसका सिर कौन सी दिशा में रहे लोगों को पता ही नहीं, चाहे जिधर पैर कर देते हैं। रात को सोवे ना तो आदमी का सिर है, आदमी स्त्री कोई भी सोने वाला उसका या तो सिर रहे पूर्व में और या सिर रहे दक्षिण में, उत्तर में पैर रहे या पश्चिम में पैर रहे, लेकिन पूर्व में पैर नहीं करना चाहिए, इधर नहीं करना चाहिए। अब कोई कहे कि साहब तुम ऐसा क्यों सोते हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ किया। कोई आदमी सूरज की तरफ पैर करके सो जा है और उसको कोई कहे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे सो तो क्या तुम्हारा क्या बिगड़ गया, तो ये आसुर भाव है, राक्षसी भाव है, किसी का बिगड़ना थोड़ा ही है, धर्म नहीं है ये। तो भाई तुम्हारा ये धर्म है क्या कि तुम सुग्रीव की स्त्री को अपनी स्त्री बना लो, ये धर्म है क्या? क्योंकि सुग्रीव तुम्हारा छोटा भाई है, छोटा भाई होने से वो तुम्हारे पुत्र के बराबर है, और पुत्र के बराबर होने से इसकी स्त्री है, ये पुत्री तुम्हारे लिए पुत्र वधु के समान है, उसकी स्त्री को तुमने रख लिया यहाँ, ये अधर्म है। और क्षत्रियों का ये जन्म इसीलिए होता है, जहाँ कोई अधर्म करे उसको दंड दो। हमारे प्रति किसने क्या बिगाड़ा ये हम हमारा अपना स्वार्थ नहीं देखते हैं, हम अगले का हित किस में है वो देखते हैं, अगले का हित धर्म करने में है। और तुमने कहा कि भाई हमारा मांस किस काम का, तो हम कोई मांस के लिए शिकार नहीं खेलते हैं, शिकार खेलने में हमारा एक निशाना करने का अभ्यास होता है, निशानाबाजी का, ताकि वो निशाना अभी लगाया हुआ युद्ध में काम आए। तो क्षत्रिय को निशानेबाज होना चाहिए, और उस निशानेबाज में शिकार के अलावा कोई उपाय नहीं, कि मनुष्य को तो करना नहीं चाहिए। तो हम लोग शिकार खेलते हैं, हमको छूट है कि हम छिप करके भी मारे। तुमने कहा छिपके क्यों मारा, तो भाई तू बंदर है, तू पशु है, तो पशु को तो शिकारी कैसे भी मार सकता है, छिप करके भी मारे, प्रकट में भी मारे, ऊंचाई से मारे, बगल से मारे और धोखा देके भी मारे, ये सब शिकार के अंदर छूट होती है। बाली ने कहा कि मेरी तो एक भी बात आपने चलने नहीं दी, बस महाराज आपके मुख से मैंने वचन सुन लिए, मैं निहाल हो गया, ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, जंगलों में ही रहता हूँ, कंदमूल फल खाता हूँ, और राज्य करता हूँ, इससे ज्यादा मैंने कुछ समझा नहीं, मेरे से बड़ी भारी गलती हो गई, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, जो नहीं कहने वाले शब्द थे वो मैंने कह दिए, और अब ये मेरा बेटा अंगद है, इस अंगद के ऊपर आप कृपा कीजिए। मुझे तारा का भी इतना चिंतन नहीं, इस अंगद का ज्यादा विचार है। और मैं तो अब जा रहा हूं, और आप अंगद के ऊपर भी कृपा करना, और मेरा विचार है कि आप सुग्रीव के ऊपर विशेष कृपा करना, क्योंकि मेरे मरने के बाद यदि अंगद में और सुग्रीव में आपस में अनबन रहेगी तो मेरा किष्किंधा का ही नुकसान होगा। इसलिए सुग्रीव को आप अपनाए रखना, और मेरे मरने के बाद सुग्रीव को यहाँ का राजा बना देना। सुग्रीव को राजा बना देने से एक तो अंगद के और सुग्रीव के आपस में अनबन नहीं रहेगी, और दूसरे में यहाँ का शासन ठीक ढंग से चलेगा। राम जी ने कहा कि अरे भाई भाली, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, अपने अधर्म को तुमने पहचान लिया, तो देखो जब तक पाप पाप के रूप में समझ में नहीं आता है तभी तक वो पाप रहता है। जब आदमी अपने दिल से मान लेता है कि ये पाप है, ये अच्छा नहीं है, बस उसके बाद वो निष्पाप हो गया। तो तुम अंगद की कोई चिंता मत करो, ये अंगद तुम्हारा बालक है, इस पर मेरी बराबर दृष्टि बनी रहेगी। ऐसी बात रावण बाली ने सुनी तो बाली के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर तारा को मालूम चला कि राम जी ने बाण लगा दिया, तो वे कई बंदर आए, बंदरों ने तारा से कहा कि देखो माता जी, आप वहाँ मत जाओ, आप वहाँ जाओगे तो वो राम जी फिर आपके बाण लगा देंगे, और जो है फिर आप भी मर जाओगे। कहा कि जब मेरा पति मर गया तो फिर मैं जिंदा रह के क्या करूंगी। कहा नहीं, आप हमारे राजा बन जाओ। कहा कि जब पति मर गए तो राज्य को लेकर क्या करूंगी। तो कहा कि फिर अंगद की रक्षा कौन करेगा, कि पति मर गए तो पुत्र को लेकर के भी क्या करूंगी। इस प्रकार से तारा मानी नहीं, और तारा वहां आकर के और अपने पति से कहने लगी कि महाराज उठिए और महलों में चलिए, आप तो किष्किंधा के राजा थे ना आर्य पुत्र, आप वहां आराम कीजिए, जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं। इस प्रकार से तारा ने बहुत विलाप किया। तान अतिथि समा साध्य, और विलाप करते हुए कहा कि देखो आपने तो सदा रणभूमि में लोगों को सुलाया है, आप कभी सोए नहीं है, पर क्या करें, भाग्य सबसे बड़ा है। मैंने आपको कितना मना किया था परंतु आप माने नहीं, उसका ये फल है। आनृणम तो गते तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे, रामेण ही महत कर्म कृतम त्वाम अभिनिग्नता। मैंने आपको कहा था कि राम सुग्रीव के पक्ष में है, और राम जिसके पक्ष में होते हैं उसकी विजय होती है। ऐसी स्थिति में आपको आज सुग्रीव से युद्ध नहीं करना चाहिए था। और देखो ये अंगद आपके सामने, इस अंगद के सिर पर हाथ रखो, हमको और अंगद को छोड़ के आप कहाँ जा रहे हो। और हे प्राणनाथ, जीवन में अपने लोग साथ रहे हैं, कहीं हमारे द्वारा कोई गलती हो गई कहने में सुनने में तो उसको आप क्षमा करना, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी यात्रा में जा रहे हो। अब आज के बाद अपना मिलना कहाँ होगा, कब होगा, कुछ पता नहीं है, अतः आप मुझे क्षमा करना। हनुमान जी महाराज आए, और हनुमान जी ने फिर तारा के पास में कहा कि हे तारे, ये अंगद आपका राजकुमार है, इस अंगद के ऊपर आप कृपा दृष्टि रखो, और आगे अपने को क्या काम करना है, इसकी कैसे उन्नति होवे, उसके ऊपर आप विचार कीजिए। जो चीज हो चुकी होती है वो अब विचारने की योग्य नहीं रहती, आप अंगद को स्वीकार कीजिए। तारा ने कहा कि देखो, एक पति के सामने सैकड़ों पुत्रों का कोई अर्थ नहीं रहता हनुमान, इसलिए पति का वियोग स्त्री के लिए बहुत बड़ा कष्ट का काम होता है। बाली ने इतने में सुग्रीव आ गए पास में, तो सुग्रीव को कहा कि देखो सुग्रीव, मैं तो जा रहा हूँ, और मेरे पास में ये इंद्र की माला है, ये माला मैं तुम्हारे गले के अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि ये माला जब गले में रहती है तब वो कभी भी शत्रु से परास्त नहीं होता। मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे मेरे पुत्र को तुम राजगद्दी पर न बैठा हो तो युवराज पद पर बैठा देना, और तुमको मेरी सौगंध है मेरे मरने के बाद तुम यहाँ का राजा बनना। देखो मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, मुझे राम ने भी कहा कि तुम्हारा बर्ताव पाप पूर्ण था, तो भाई अब मुझे तुम भी कोई मन में बुरा मत मानना और जो है तुम उन बातों को मन से निकाल करके और ये माला स्वीकार करो, राज्य को स्वीकार करो और अंगद को भी स्वीकार करो। तब उसने माला स्वीकार कर ली और माला स्वीकार करने के बाद बाली ने अंगद को बुलाया और अंगद को बुला के बड़ी अच्छी राजनीति का उपदेश दिया कि देख बेटा मेरे मर जाने के बाद तुमको युवराज पद पर बैठाया जाएगा, तुम अपने चाचा के साथ मेरे विरोध को याद रख करके कभी इनके साथ कपट का बर्ताव मत करना, कारण ये तुम्हारे योग्य काम नहीं है। मैंने तुमको खूब पालन पोषित करके बड़ी आशा के साथ बड़ा किया है, तो तुम गुणों में भी बड़े रहना। और देखो इस संसार में एक दो बात है प्रेम रखने की, एक बात है कि जो सुग्रीव के साथ प्रेम रखता है उसी के साथ प्रेम रखना, जो सुग्रीव के साथ नाराज रहने वाले हैं उनके साथ कभी भी घुल मिल करके एकांत में भी बात मत करना, क्योंकि अपने आदमियों का अपनत्व तो इसी बात में है कि उसका जो है वही हमारा है और जो हमारा है वही उसका है। और एक दूसरी बात यह है अपने कर्तव्य का पालन करना और ज्यादा संसार में किसी के साथ भी तुम विशेष प्रेम मत करना और न लोगों से कोई टूटने वाला व्यवहार करना, ऐसा व्यवहार करना कि जिससे दोनों जिससे सब बातें निभ जाए, दोनों की निभ जाए, क्योंकि ज्यादा स्नेह करोगे तो वो भी टूटेगा और लोगों को तुम तोड़ोगे ये भी ठीक नहीं है। अब मेरा भाई जाने का समय है, अतः तुम किसी प्रकार से विलाप मत करना। बानर लोग बेचारे बड़े दुखी हो गए, उन बानरों ने विचार करके देखो ये किष्कंधा आज विधवा हो रही है, हमारे बानर राज बाली के निधन हो जाने के पश्चात हम बानरों का कौन स्वामी होगा, कैसे स्वामी होगा। येन दत्तम महद युद्धम, पहले एक गोलव नाम का गंधर्व था, वो 15 दिन तक हे महाराज आपसे लड़ा था, वो गंधर्व बड़ा शक्तिशाली था, परंतु 16वें दिन वो आपके द्वारा मारा गया था, तो सब जगह आपके बल की महिमा फैल गई थी, वो आप आज एक बाण के द्वारा मारे गए हो, इसका अर्थ है कि संसार में भाग्य प्रबल होता है, शक्ति वगैरह का कोई अस्तित्व नहीं है। तारा ने फिर उस समय अपने पति से कहा कि हे पतिदेव आप मुझे छोड़कर मत जाइए, आज तो मैं एक बात की घोषणा करती हूँ कि संसार में अपनी कन्या को शूरवीर को नहीं देना चाहिए, क्योंकि शूरवीरों का पता नहीं कब किस समय में युद्ध हो जाए और वो जो है अपनी स्त्री को विधवा कर दे, कुछ पता नहीं है। आज आपको देख करके मैं जी रही हूँ, इसका अर्थ यही है कि मेरा हृदय पाषाण का है और मैं इतने आप चिल्ला रही हूँ रो रही हूँ फिर भी आप नहीं बोल रहे हैं, क्या कारण है। इस प्रकार से जो है तारा विलाप करने लगी और उसके बाद सुग्रीव के पास में जो वो नल नाम का बांदर था वो आया बाली के पास और आकर के पहले बाली ने कहा कि ये बाण मेरे हृदय से निकाल दो, तब ये नल नाम का नील नाम का बानर आया और उस बानर ने आकर के और उसका बाण था वो बाण उसके छाती से निकाला। छाती से निकालने के बाद उसके पहले तो बहुत जोर से पीड़ा हुई और फिर उसकी पीड़ा कुछ कम हुई। उसके बाद उसने तारा से कहा, तारा ने अंगद से कहा कि देखो बेटा तुम्हारे पिता अब अंतिम अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं और अपने पिता के चरणों में तुम प्रणाम करो। प्रणाम करने के बाद अंगद ने कहा कि पिताजी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जब भी प्रणाम करता था आप मुझे आशीर्वाद देते थे, क्योंकि प्रणाम करने वाला यदि प्रणाम करता है और प्रणाम जिसको किया जाता है वो आशीर्वाद नहीं देता है या प्रणाम का उत्तर आशीर्वाद से नहीं देता है तो उसको गाय मारने जैसा पाप लगता है कि भाई उसने प्रणाम किया तुमने आशीर्वाद क्यों नहीं किया। इसलिए कोई भी अभिवादन करे, कोई भी मिले और अपना कोई जो है अपने को कोई अभिवादन करे तो वापिस उसका उत्तर देना चाहिए। संतों में भी यही बात है कि कोई आके उनको राम महाराज वगैरह बोलता है और वापिस यदि वो नहीं बोलते हैं उनको दुख होता है, सुनाई नहीं दे तो बात अलग है। तो संतों में तो आपस की बात है कि तीन बार करते हैं वो, तीन बार कैसे, एक बार तो पहले खुद गया राम महाराज, दूसरा उसने राम महाराज उसके जवाब का राम महाराज दो और फिर अपनी तरफ से एक और करते हैं, इसलिए तीन बार राम महाराज करते हैं। तो अंगद ने कहा कि मैं तो आपको अभिवादन कर रहा हूँ, आप दीर्घायु का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं। आपको इस अवस्था में देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि आज आप रणभूमि में संग्राम रूपी यज्ञ के अंदर राम के बाण रूपी जल के अंदर आप स्नान किए हैं और इस स्नान के अंदर आप अपनी पत्नी के बिना कैसे अवभृत स्नान किए। कोई भी यज्ञ होता है उसमें पति के साथ पत्नी बैठनी बहुत जरूरी है, यदि पत्नी नहीं बैठती तो वो यज्ञ अधूरा होता है। तो आज संग्राम रूपी यज्ञ आपका अधूरा हो गया है। इस प्रकार से बेचारा बहुत देर से शोक करने लगा और फिर उसके बाद राम जी से वो कहने लगा, यथा प्रतिज्ञात मिदम नरेन्द्र कृतम त्वया दृष्ट फलं च कर्म ममाद्य भोगेशु नरेन्द्र सुनो मनो निवृत्तम हत जीवित न। हे राम, तुमने तो सुग्रीव के सामने जो प्रतिज्ञा की थी वो तुमने तो पूरी कर ली और जो है मेरा मन जो है अब सबसे निवृत्त हो चुका है। इतना ही है कि राम तुम्हारे कहने में सुग्रीव है, माजी बोलो मत थे, अब मन बोलन दो थोड़ा, थे बोलो जना मार बोलने में बाधा पड़े, थाने कहीं कहना मैं धीरे सी कह दो, थोड़ी देर रोका मैं घड़ी देर में थाने रोका को नहीं कि अब आ स्थिति को नहीं कथा में बैठ तीन तीन चार चार घंटा थे बैठ सको आज वास्ते, अब यार आपने छोड़ दिया थोड़ी सी देर की बात है, अब कोई मरे करे थोड़ा टाइम लाग जाए और कोई खास बात को नहीं। हते नृपे संसहिते अंगदे च न राम राज्य रमते मनो में। और उसके बाद सुग्रीव आया और सुग्रीव ने कहा कि महाराज अब आप जो है प्रतिज्ञा तो आपने पूरी कर ली, अब मुझे आप छुट्टी कर दीजिए, अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ और मेरे बाद आप अंगद कोई राजगद्दी पर बैठा हो, ये मेरे बड़े भाई मेरे बैठने के लिए बोलते हैं, मुझे तो बड़ी घृणा हो रही है। अंगद आपका सारा काम कर देंगे और किसी प्रकार से आपके काम में जो है बाधा नहीं डालेंगे। बड़ा अच्छा होता राम मैं मेरा ऋषिमुख पर्वत पर बैठा रहता, नत्वा जिघांसामि चरे यन्माम अयम महात्मा मतिमान उवाचे। मैं वहां ऋषिमुख पर्वत पर रहता तो ये दशा आज नहीं आती, मैं वहीं बैठा रहता। मैंने इस महापुरुष को बाली को आपके बाण से जो है प्राण विवाह करके अच्छा काम नहीं किया है, अपने भाई का वध करने वाला एक मैं तो संसार में क्रूर कर्मा रहा हूँ। मेरे भाई बड़े धर्मात्मा हैं, एक दो क्रियाओं से कोई पापी नहीं हो जाता, अधर्म युक्त जो काम किया था उसको बिना बाण के भी दूर कराया जा सकता था। हे राम अब तो मैंने इससे भी बड़ा पाप कर दिया, यदि आप पापियों को बाण मारने के लिए ही है तो जो पाप मेरे भाई ने किया था उससे बड़ा पाप तो मेरे द्वारा हो गया, आप मेरे क्यों नहीं बाण लगा देते हो। फिर राम जी ने तारा को समझाया, तारा को भी समझा करके और राम ने एक ही बात कही कि देखो तारे अब तुमको शोक नहीं करना चाहिए। तारा ने कहा कि राम आप अप्रमेय हो, आपकी अचिंत्य शक्ति है, आप दिव्य देह वाले हो, केवल मनुष्य स्वरूप में आप अवतार लेकर के आप आए हो, अब इस अवतार में आपको मालूम है ना कि जो है स्त्री के बिना कितना कष्ट होता है आपको पता है, तो ये जब अपना शरीर छोड़ चुके हैं, अब ये जिस लोक में भी जाएंगे वहाँ पर अप्सराओं को तो ये स्वीकार करेंगे नहीं, और मैं इनसे दूर हो गई, अब इनके मन में मेरे बिना कितना कष्ट होगा ये तो आपको पता ही है। अतएव आप ही अपने पास जो बाण है वो बाण मेरे लगा दो और सदा के लिए मुझे छुट्टी दे दो। तारा को फिर बड़े हित भरे वचनों से राम जी ने फिर कहा कि देखो, दुखों का संयोग और वियोग आना ये सृष्टि का अनिवार्य नियम है तारे। कोई भी व्यक्ति त्रिलोकी के अंदर इस विधान में से बच नहीं सकता है, लेकिन शूरवीर वो तो है, वो होते हैं कि जो इस तत्व को गहराई से समझ करके अपने को सुख दुख की आंच से बचा लेते हैं। फिर राम जी महाराज ने सबको सांत्वना देते हुए कहा कि आप लोग अब ये सोचिए कि क्या करना चाहिए, तो आप लोग इसका अंतिम संस्कार कीजिए और शोक करने के लिए अब आपके पास में कोई कारण नहीं रह गया है, क्योंकि शरीर से प्राण निकल जाने के बाद निकल ही जाते हैं, वो दोबारा आते नहीं है। तब फिर उन्होंने शिविका मंगाई, शिविका माने पालकी, पालकी मंगाई, पालकी में उनको बैठाया और बड़े धूम धमाके के साथ में नदी के किनारे चिता बनाकर के उनका संस्कार कर दिया। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे महाराज, अब आप किष्किंधा में पधारो, किष्किंधा में पधार करके और आप अभिषेक कर दीजिए सुग्रीव का। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी के कहने पर राम जी ने कहा कि देखो हनुमान, 14 बरस तक तो मैं कहीं अंदर जा ही नहीं सकता हूँ किसी भी नगर में, इसलिए भाई तुम लोग जाओ और सुग्रीव को मैं आदेश देता हूँ, अंगद को युवराज जरूर बनाना है, यौराज्य अभिषेच है, क्योंकि बड़े भाई का जो लड़का होता है वो अपने लड़के से भी ज्यादा आत्मीय और प्यारा होता है। देखो सुग्रीव, यदि तुम युवराज बना देते हो अंगद को, तुम्हारे और अंगद के बीच में स्नेह बना रहेगा और ये काम करना तुम्हारे लिए बड़ा उचित है, और रावण के वध के लिए भी अब अपने को आगे काम करना है, तो अभी तो बरसात का समय है, बरसात का समय हो जाने से अभी तो सब जो है एक अपनी अपनी जगह रहते हैं, और तुम लोग भाई जितने सब बंदरों को इकट्ठा कर लो और आगे की योजना तुम बना लो, ऐसा कह करके और राम जी महाराज तो प्रश्रवण पर्वत पर चले गए और वहाँ पर खूब बड़ा आनंद उत्साह के साथ में सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया और अंगद जी का युवराज पद के ऊपर जो है उनको युवराज पद पर विराजमान कर दिया। प्रश्रवण पर्वत पर रहते हुए भगवान प्रकृति की निराली घटाओं को देखते हैं, कैसा सुंदर ये पर्वत है और उसमें पर्वत पर ये गुफा कैसी है कि जो बड़ी ठंडी भी है और बरसात के बोछारों से कोई बाधा भी नहीं पड़ती, कि जिधर से बोछार आती है वो दिशा में एक बड़ी चट्टान आई हुई है, दूसरी तरफ खुला खुली हवा चलती है और पास में ही वहाँ पर तलैया है, उसमें अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। इन सब को देख करके राम जी महाराज सीता की याद करके रोते हैं। लक्ष्मण जी उनको समझाते हैं कि महाराज, आप त्रिलोकी में सब कुछ करने में समर्थ हैं, लेकिन आप ये शोक करते हो, ये शोक को आप क्यों नहीं मिटा लेते, आप शोक को दूर नहीं कर सकते, फिर आपकी समर्थता कहाँ काम आएगी। लक्ष्मण जी के बात सुनकर के राम जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा है लक्ष्मण, देखो राम जी ने इतना शोक क्यों किया हो कि लक्ष्मण शोक न करे, इसलिए राम जी इतना शोक करते थे, लक्ष्मण जी को बड़ा शोक होता। जो घर में समझदार आदमी होता है, बड़ा होता है, वो यदि शोक करता है तो दूसरे उसको समझाते हैं कि आप शोक मत करो, तो वो राजी होता है मन में, चलो दूसरे लोगों के मन में ये भावना तो आ रही है, शोक मत करो। फिर राम जी को कहा कि देखो महाराज, आप जो है शोक को मत कीजिए, यथोक्तमेत तव सर्वमीप्सितम नरेन्द्र कर्ता नचिरात तु बांध रहे। भाई क्या बताए, अभी तक तो जो है सुग्रीव ने कोई किसी प्रकार से तैयारी भी नहीं की और ये वर्षा कितनी अच्छी आ रही है, कितने अच्छे मेघ है, खूब लंबा चौड़ा वर्णन आता है, मेघों की काली घटाएं कितना अच्छा जो है आश्वासन देती हैं। जाता वनांता शिखिसु प्रणत्ता, जाता कदम्बा सकदम्ब शाखा, कदम्ब की शाखाएं बरसात के अंदर खूब अच्छी जल को लिए हुए अपने पत्तों से बरसात में भी और नई बरसात करते रहते हैं। यहाँ पर नदियाँ बहती हैं, बदलों की घटाएं छाई रहती हैं, मदोन्मत्त हाथी सन्नाद करते रहते हैं और मयूर हैं वो नाचते रहते हैं, पक्षी हैं वो तरह तरह के शकलों से अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। कितनी अच्छी है बरसात है, बरसात तो सबको जो है जल देने वाली जीवन देने वाली ऋतु है। इस प्रकार से वर्षा ऋतु का वर्णन करते करते कहने लगे कि देखो ये भादवे का महीना है, इसमें लिखा है वो बोलते हैं, वो बना के नहीं बोलते, पर आज बरसात है इसलिए बोले सो बात भी नहीं है। इसमें लिखा है मासी प्रोष्ठ पदे ब्रह्म, ये बरसात का महीना वो भी भादवा का महीना है, बड़ा अच्छा महीना है, इसकी बरसात को देखकर हमारा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। परंतु भाई देखो तुमको मालूम है कि सुग्रीव किसी भी प्रकार से कोई तैयारी नहीं कर रहा है, यहाँ पास में किष्कंधा के अंदर नाचने की गाने की बड़ी आवाजें आती है, इसका मतलब है सुग्रीव तो एकदम विषयों में पड़ गया है। क्या बात है, उपकार का बदला तो चुकाना ही चाहिए ना। इधर हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि सुग्रीव किसी भी प्रकार से अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो एक दिन सुग्रीव के पास हनुमान जी गए। हनुमान जी ने जाकर कहा कि हे महाराज, आपने राज्य प्राप्त किया, अपनी पत्नी प्राप्त की, आपने धन प्राप्त किया, आपने यश प्राप्त किया, उनके काम को आप भूलते चले जा रहे हो, आपने ये नहीं सोचा कि कृतज्ञता का कितना बड़ा दोष लगेगा, आपने उनके सामने ये प्रतिज्ञा पूर्वक बात कही है कि मेरे हाथ मेरा कष्ट मिट जाए।